अति सम्मान्य आदरणीय सूर्य भाई जी से कि इस भट्टी को कैसे संपूर्ण सफल करें उस पर हम सबको मार्गदर्शन दें। आदरणीय भाई जी,
ओम शांति। ये जीवन और ये समय बहुत ही सुंदर है। भाग्यवान आत्माओं को ये मौका मिला है भगवान से सब कुछ लेने का। आप यहां आए हैं, ऐसा चिंतन करेंगे, ऐसी प्लानिंग करेंगे जो संगम युग पूरा सफल हो जाए। जब हम इस संसार से लौटें, भरपूर होकर लौटें। बचपन से ही सब सुनते हैं, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है। ऐसा ही है क्या? हमारे लिए ये सब नहीं है। भरपूर आए थे भरपूर जाएंगे, ऐसे भरपूर जाएं कि शिव बाबा भी वतन में वेलकम करे, आओ मेरे भाग्यवान बच्चे आओ। ऐसा भरपूर हमें होना है। चाहे आप नए ज्ञान में हैं, एक दो साल से हैं, इसका कोई ये कोई समस्या नहीं है कि आप लेट आए हैं। जब आए हैं आपको एसेंस मिल रहा है, ज्ञान और योग का सार आपके समक्ष है। समय की मदद है, बाबा की बहुत मदद है। सहज रूप से जो कुछ चाहे कर सकते हैं। मनुष्य में ये ताकत है। मुझे ये बाबा की बात बहुत प्रिय लगती थी। शुरू में बाबा कहा करते थे, तुम जो चाहो कर सकते हो। अब हम क्या चाहते हैं ये हमें खुद सोचना है। थोड़ा सा लेना चाहते हैं, भरपूर होना चाहते हैं। बात भविष्य की नहीं है, पहले बात वर्तमान की है। हम अपनी स्थिति को इतना सुंदर बना दें कि ना कोई भय हमारे अंदर प्रवेश करे। इंग्लिश का एक शब्द है एंग्जाइटी, जो आजकल बढ़ती जा रही, बहुत ज्यादा बेचैनी और चिंता। एक तो चिंता होती है, चिंता के साथ बेचैनी, बहुत परेशानी, उसको एंग्जाइटी कहते हैं डॉक्टर लोग, मेडिकल वाले। वो बहुत बढ़ रही है। अपनी स्थिति को ऐसा बना देना है कि ये सब चीजें तो हमारी ओर देखें भी नहीं, लेकिन संसार हमारी ओर देखे, हम संसार को देने वाले बन जाएं। केवल मार्ग दिखाने वाले नहीं, देने वाले, सबके दुख हरने वाले, सबको हिम्मत देने वाले। पीछे बाबा ने कहा, भोलेनाथ से निराला गीत बजा था, उसमें एक शब्द है, तुम भक्तों के रक्षक हो। तो मैं तो भक्तों का रक्षक हूं ही, और तुम जब सब भगत थे मैं तुम्हारी रक्षा करता आया हूं, लेकिन तुम भी भक्तों के रक्षक हो। हमारे भी तो भक्त हैं या नहीं दुनिया में, हैं? पता है सबको या नहीं? हम सबके भी भक्त हैं, और वो भक्त हमारी ओर प्यासी नजरों से ही देखते हैं। हमें उनकी रक्षा करनी है, उनको मदद करनी है। तो तीन दिन में यहां बहुत अच्छा चिंतन करेंगे सभी। मैं अच्छे से अच्छा क्या कर सकता हूं, कर सकती हूं, विचार करेंगे। जैसा आपका घर है, जैसे आपकी घर की सिचुएशन है, जो आपके लिए सहज करना संभव है, उसको देखते हुए अच्छे से अच्छा ये किया जा सकता है, उसकी एक सुंदर प्लानिंग करना। यहाँ ऐसे नहीं कि यहाँ तीन दिन भट्टी हो गई, बहुत मजा आ गया, और वो मजा धीरे धीरे खत्म हो जाए। श्रेष्ठ पुरुषार्थी, श्रेष्ठ बुद्धिमान वही है जो अपने अनुभवों को, अपने पुरुषार्थ को कंटिन्यू करे, आगे बढ़ाए। जिसके छूट जाते हैं वो बुद्धिमान नहीं माना जाएगा, क्योंकि बहुत सारे अनुभव जब हम प्रारंभ में होते हैं, जब हम लगन में होते हैं, बाबा अपनी शक्तियों से हमें अनुभव करा देता है। जैसे माँ बाप बच्चे को हाथ पकड़ के चलना सिखा देते हैं, फिर उसको खुद चलना होता है। तो जो बाबा हमें सुंदर अनुभव करा देता है, उनको हम कितना आगे बढ़ाते हैं, उनको हम अपना जीवन बनाते हैं, या थोड़े समय के अंतराल पर वो वहीं समाप्त हो जाता है, इसका हमें यहां बहुत अच्छा चिंतन करना है। तो बहुत अच्छे चिंतन के साथ, बहुत अच्छी उमंग उत्साह के साथ आप 3 दिन यहां व्यतीत करेंगे, और ऐसे भरपूर होंगे कि जब आप यहां से जाओ तो चेहरा कैसा हो जाए, बोलो कैसा हो जाए। परिवार वाले पूछें कौन सी चीज मिलती थी, कॉस्मेटिक कहते हैं, क्या कहती हैं बहनें उसे आजकल, क्या मिलता था आबू में, चमक के आए हो। वो चमक बाहरी नहीं होती, वो चमक आंतरिक होती है, जो आत्माओं की चमक को बढ़ा देती है। ये तो आप खुद देखेंगे 3 दिन में, आज चेहरा देख लेना, आज तो थके हुए भी होंगे, और जाते समय अपना चेहरा देख लेना, कितना बड़ा परिवर्तन होगा। ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजाएंगे, वे टाइम हो गया, गीत बजेगा फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम सभी को बाबा से सर्वश्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करना है। कौन कौन चाहेंगे सारा भाग्य ले लें भगवान से, पक्का यही हाथ उठाएंगे, घर में जाके भी उठाएंगे। तो देखो, मैं लोगों को एक चीज कहता हूं, कल भी मैं बाहर था 3-4 दिन, तो कुछ स्टूडेंट आते थे, कुछ बिजनेस धंधे वाले सूरत में जहां मैं था, बहुत फैक्ट्री वाले कनेक्शन में हैं, कई प्रॉब्लम में हैं, जो हर मास करोड़ों कमाते थे वो समस्याओं में आ गए हैं। मैं साक्षी होके देख रहा था कैसा कर्मों का खेल चल रहा है। मैं खुद सोचता हूं, प्रेरणा मिलती है मुझे उन सब से, कि मनुष्य अपने परिवार की पालना के लिए लौकिक में, आप सब भी कितनी मेहनत करते हैं, सारा दिन करते हैं भाई लोग, कोई कोई को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, 10-10, 12-12 घंटे की ड्यूटी, बहनों की भी, बच्चों को भी संभाल रही, खाना बना रही, ऑफिस भी जा रही, थक रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, इतनी मेहनत अगर भगवान से सब कुछ लेने के लिए कर दी जाए तो क्या हो जाएगा, बोलो बहने बताओ क्या हो जाएगा, मालामाल। 3 युग तक धन कमाना नहीं पड़ेगा, कोई चिंता नहीं नौकरी पे जाने की, 3 युग 4000 साल, कितनी बड़ी प्राप्ति है। विचार करेंगे हम क्या कर रहे हैं, क्या हमारे मन में ऐसी उमंग है बाबा का महावाक्य सुनते होंगे आप, सुनते हैं रोज, क्लास करते हैं ऑनलाइन ही सही, कौन कौन ऑनलाइन के बच्चे पैदा हुए बैठे हैं, यहां हाथ उठाएंगे, ऑनलाइन के बच्चे उठाओ ना, आजकल ऑनलाइन के बच्चे बहुत हैं, बहुत अच्छा। मुरली तो सुनते हैं ना बहन जी, ऑनलाइन के बहुत हुए हैं बच्चे, बहुत हो गए, मैंने उनको नाम दे दिया, ऑनलाइन की पैदाश है ये, कभी ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चे थे, फिर अव्यक्त बाप दादा ने संकल्प से बुलाया सबको, विदेशियों को बुलाया, और अब ऑनलाइन, और अगले बच्चे होंगे, चौथा भी आने वाला है। साक्षात्कार के द्वारा। जब बहुत बड़ा रोल इस सृष्टि पर बाबा की मान आत्माओं के द्वारा होने जा रहा है, वो दिन दूर नहीं। ये नहीं कि बाबा ऐसे ही कह देता है सालों साल गुजरते आए हैं, अब आ गए हम, 2025 तक तो सारा खेल ही बदल जाएगा संसार का, लगेगा युग बदल गया है। तो मैं याद दिला रहा था आपको, बाबा मुरली में कहते हैं, बच्चे मेरे से जो चाहो ले लो, संभालो बुद्धि में। कौन कह रहा है? स्वयं भगवान, जो दाता विधाता वरदाता है और जो हमें रियलाइजेशन देता है कि मेरा सब कुछ तुम्हारे लिए है। माँ बाप बहुत बैठे हैं सभा में लौकिक, आपका सब कुछ आपके बच्चों के लिए ही होता है ना? बहुत मेहनत करते हैं लोग अपने बच्चों के लिए। भगवान ने भी कह दिया मेरा सब कुछ तुम्हारे लिए है, लेना तुम्हें है। बोलो लेंगे? मैं आपको एक बहुत सरल और बड़ी चीज की ओर ले चलना चाहता हूं, बिल्कुल सरल लेकिन बहुत बड़ी। जो उसको रियलाइज कर ले, जो उसको समझ ले, बेड़ा पार। बाबा को हम कहते हैं वो मेरा है। जरा सा पूछ लेता हूं, 2 साल तक ज्ञान में कौन कौन है? 2 साल, 1 साल, 1.5 साल, हाथ उठाओ। 5 साल से कम कम, 5 साल से ज्यादा? अच्छा, बाबा मेरा है। किस किस को नशा है? कौन है मेरा? स्वयं भगवान। मैं वो बात क्लासेज में बहुत सुनाया करता हूं और मुझे बहुत प्रिय लगती है, इसलिए बार बार सुनाता हूं। मधुवन में बाबा के अव्यक्त होने पर छोटी भट्टियां शुरू हुई। उन दिनों यज्ञ छोटा था, हिस्ट्री हॉल जो मधुवन में है आप सबने देखा होगा, 60-70 ज्यादा 80 भाई बहने आ जाते थे भट्टी में। माताओं की भट्टी थी, आ गई 70-80 होंगी। तो ओपनिंग करने अव्यक्त बाप दादा आया करते थे भट्टी की, और फिनिशिंग करने क्लोजिंग करने भी अव्यक्त बाप दादा आते थे। बाबा आए, छोटी सी क्लास, सब पास पास बैठते थे। तो बाबा ने पूछा अब आप इस सूक्ष्म नशे की ओर चलना। बाबा ने पूछा तुम सभी कहते थे हे भगवान जब आप इस धरा पर आओ हमें अपना बना लेना। मैं आ गया हूं, तुम सबको अपना बना लिया है, लेकिन एक चीज मैंने वो भी तुम्हें दे दी जो तुमने मांगी नहीं थी। तो बाबा पूछने लगे माताओं से, क्लास होती थी, भगवान बैठा है, वो भगवान नहीं अपने परिवार में बैठता था टीचर, पूछने लगे माताओं से क्या दिया जो तुमने नहीं मांगा था। किने का प्यार दिया, किने का हमें तो पता ही नहीं था, ज्ञान दिया, नया जीवन दिया। माताएं भी होशियार थी, कई अच्छे उत्तर दिए। बाबा ने सबको प्यार भरी दृष्टि दी। उन दिनों थोड़े होते थे तो बहुत चलता था ये पावरफुल, 3 मिनट कम से कम सबको पावरफुल दृष्टि दी। हम लोग पीछे बैठे थे और कहा मैं भी तुम्हारा हो गया। डायरेक्ट भगवान ने बोला, मुझे तो नशा चढ़ गया। भगवान बोल रहा है तुम तो मेरे हो ही गए पर मैं भी तुम्हारा हो गया, और ये नशा मेरा कायम रहा है जीवन भर, आप भी इसको चढ़ा दो। कौन है मेरा? जो बिगड़ी को बनाने वाला है वो मेरा है। आपकी कहीं बिगड़ गई हो, इस रूप से उसका आह्वान करना, तुम बिगड़ी को बनाने वाले हो, मेरे हो, आ जाओ बनाओ। बिगड़ी बन जाएगी। बीमारी बहुत हो गई हूं, सुन रही ध्यान से माताएं, बीमारी बहुत हो गई हूं, बुला देना हे सुप्रीम सर्जन, तुम मेरे हो, आ जाओ हरो इस बीमारी को। देखो चमत्कार, तो जो सर्वशक्तिवान है वो मेरा है, ले आओ अपने अंदर, चिंतन मिलाओ। जो प्यार का सागर है वो मेरा है, जो भाग्य विधाता है वो मेरा है, जो सर्व वरदानों का दाता है वो मेरा है, जो सृष्टि का बीज है वो मेरा है, जिसके दर्शनों के लिए भी लोग इंतजार करते हैं, हम भी करते थे, वो मेरा है। मेरे पर क्या होता है, बस ये बात जो समझ ले, मेरे पर होता है अधिकार। क्या होता है अपनों पर, बोलो क्या होता है? तो जो भगवान है वो मेरा है, उसका सब कुछ किसका हो गया? अगर ये नशा हो जाए तो उसे सब कुछ पाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक सम्राट का लड़का राजकुमार, उसको राज का खजाना पाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो उसका ही होता है। अब जिस बात की ओर मैं आपको ले चल रहा था उधर चलें, उसका सब कुछ तो मेरा है लेकिन उस पर भी मेरा अधिकार है, उसकी सर्व शक्तियों पर भी मेरा अधिकार है। दोनों बातें बहुत बड़ी, बहुत गुह्य और अति सरल हैं। समझने के लिए सरल, क्योंकि वो मेरा है तो उस पर मेरा अधिकार है, वो मेरा है तो उसकी सारी शक्तियां भी मेरी हैं। समझने के लिए बिल्कुल सिंपल, लेकिन यदि कोई इसको अपने जीवन में समाओ ले, बना लो आज से उसको अपना सच्चा खुदा दोस्त, क्या बना लो? सच्चा मित्र, मन का मित्र, मन की बातें करो उससे। मित्र माना, देखो दो मित्र, जो चीज आपको आप अपने माँ बाप को नहीं बताएंगे वो मित्रों को बता देंगे। मित्र, फ्रेंड इज वेरी फ्रैंक टू ईच अदर, बहुत फ्रैंक, ओपन टू ईच अदर, बिल्कुल खुले। मित्र के लिए कहा जाता है दो दिल एक आत्मा, दो हैं पर एक। बनाओ, बनाएंगे? बोलो बहने, बनाएंगे खुदा को दोस्त या इधर बहुत सखियां हैं? इधर वालों को भी रखो, नहीं छोड़ना नहीं, मैं कभी नहीं कहता सबसे नाता तोड़ दो, उनको भी रखो, लेकिन सच्चा सुप्रीम खुदा दोस्त। भाई लोगों का क्या विचार है? बस इसमें जरूरत इस चीज की है कि दोस्ती दोनों तरफ से निभाई जाती है, या एक ओर से, रिश्तेदारी एक ओर से तो नहीं निभाते ना, दोनों ओर से। भगवान हमारा दोस्त है, उसको फ्रेंडली बात किया करो, समीपता होती जाएगी, प्यार बढ़ता जाएगा, भगवान क्या है ये समझ में आता जाएगा। पता है ये बात गहरी, एक ही बार आई थी साकार मुरली में, दोबारा तो मैंने भी नहीं सुनी, अब से 45-46 साल पहले आई थी, उसके बाद मैं ढूंढता रहा कि दोबारा भी तो आएगी साकार मुरली में, आई नहीं। बाबा ने कहा था जब तुम मुझे संपूर्ण रूप से जान जाओगे तो तुम भी संपूर्ण बन जाओगे। कितने बड़े राज की बात है जानना। आप कहेंगे हमने तो बाबा को जान लिया, छह बातों में परिचय कर लिया, वो परिचय है, जानना कुछ और होता है। तो बाबा को हम जानते जाएंगे जितना उसके समीप रहेंगे। समीप रहने से ही जाना जाता है ना किसी व्यक्ति को भी। कोई व्यक्ति बाहर से बहुत स्वीट हो लेकिन अंदर में गड़बड़ वाला हो, जब हम उसके समीप रहेंगे, व्यवहार में साथ आएंगे तो पता चलेगा ये तो धोखा देने वाला है, बाहर से स्वीट है पर अंदर में बड़ी गड़बड़ है इसके। तो भगवान भी क्या है, वो हमें कितना प्यार करता है, वो हमें क्या देखना चाहता है, वो हमें क्या बना देना चाहता है, वो हमारे लिए क्या क्या करता है, इंपॉर्टेंट बात वो हमें समझ में आता जाएगा। जैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, करते हैं या नहीं मुझे कहने पूछने की जरूरत नहीं, बच्चे बड़े होके ये भी कह देते हैं तुमने मेरे लिए क्या किया। सारी माँ बाप की मेहनत एक सेकंड में पूरा कर देते हैं, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो कहीं हम भी बाबा की उस भावना को समझने में कमजोर तो नहीं है कि वो हमारे लिए क्या क्या कर रहा है, क्या क्या करता है, वो हमें क्या बना देना चाहता है। मैं सोचा करता था अपने जीवन में, बाबा कहते थे बाप समान बनना है, बाप की शुभ भावना है, शुभ इच्छा है कि मेरे बच्चे बाप समान बन जाएं। मैं सोचता था भगवान की शुभ इच्छा और हमारी शुभ इच्छा अगर एक हो जाए, बोलो क्या अर्थ हुआ इसका। वो बनाना चाहता है हमको अपने जैसा और हम बनना चाहते हो। कहने के नहीं लेने, मुझे बाप समान बनना है कहने से नहीं होता। वो बनाना चाहता है, हम बनना चाहते हो तो बनने में देर नहीं लगेगी। और जो बनना चाहता है वो उसकी प्लानिंग करता है। आप अपने काम धंधे भी करते हैं, माताएं घर में भोजन भी बनाएंगी, प्लानिंग करेंगी या नहीं, मेहमान आ रहे हैं भाई ये चीज बनानी है तो बाजार से लाएंगे, माल इकट्ठा करेंगे तब तो बनाएंगे। ऐसे ही सोच लें ये खिलाना है और इंतजाम कुछ ना करें, चलेगा। तो बाबा समान बनना है। आप कहेंगे बहुत बड़ी मंजिल है, 50-60 साल वाले नहीं बने हम कैसे बनेंगे, कई लोग ये भी सोचते हैं। सिंपल उत्तर होता है हम कहां बनेंगे। और भी मैं एक हंसी की बात सुनाऊं, बाबा की मुरली में बहुत आता है बच्चे 8 घंटे आराम के लिए, 8 घंटे कामकाज के लिए, 8 घंटा मुझे याद करो। ये सुन के आप सब क्या करते हैं बताओ, अपनी कहानी बताओ। बहुत तो सुनते ही नहीं है, जो सुनते हैं वो क्या अंदर ही सोच लेते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि उन्होंने सोच लिया। ये काम अपने बस का नहीं है, दीदियां जो सेंटरों में रहती हैं वो करेंगी। दीदियां कहते हैं ये काम अपने बस का नहीं, मधुवन वाले करेंगे। मधुवन वाले सोचते हैं बहुत सेवाएं हैं, कहां होगा ये, कर लेंगे बड़े लोग। बात इधर से आगे बढ़ती जाती आती है हम लोगों पर, तो हमें तो करना ही है। लेकिन अगर कोई सोच ले कि भगवान कह रहा है मुझे करना है, तो उसको ईश्वरीय बल बहुत मिल जाएगा। ये पक्की बात जान लो आप सभी, जो वो करने को कहता है यदि हम वो करना चाहते हो तो बल बहुत मिलेगा। अगर हमने संकल्प कर लिया मुझे रोज सवेरे उठकर बहुत अच्छा योग करना है, दृढ़ता ले आई तो बाबा बहुत मदद करेगा, आपको उठाया करेगा। मैं हंसी की एक बात सुना देता हूँ, कभी कभी क्लास में सुना देता हूँ। एक सेंटर में पहुंचे हम रात को 12 बजे, हमने सोचा था आज सवेरे नहीं उठेंगे, सारा दिन तो भट्टी है, सो लेते हैं 5-5:30 तक ठीक रहेगा। प्रभु की प्लानिंग देखो, आपको बड़ा मजा आएगा प्रभु की प्लानिंग सुनने में। हमारा कमरा सेंटर के किनारे पे था, ठीक 4 बजे 4 कुत्ते आए और हमारे कमरे के बाहर लड़ना शुरू कर दिया और हम उठ गए। कहा वाह प्रभु तेरी लीला। कई जगह होता है ऐसे। अभी मुझे एक दिन अभी हफ्ते की बात है, ऐसे ही कुछ था, पता नहीं, याद नहीं आ रहा। अमृत वेला उठने, शाम को 3:30 मुझे उठना था, देर से सोया था, 3:30 ही उठना था दोपहर में। 4 बजे से विदेशों में क्लासेस थी, 4 से 5, बिना नहाए धोए कराना होता है, 4 बजे नहाते नहीं है, उठते ही। तो मैं सो गया और देखो 3:30 क्या हुआ, विदेश की एक बहन का फोन आया, घंटी बजी और मैंने फोन तो बंद कर दिया, लेकिन बाबा को बहुत शुक्रिया किया कि वाह तुम्हारी प्लानिंग, मैं तो सोया ही रह जाता, 4 बजे कोई उठाता आके। बाबा की मदद उन आत्माओं को मिलती है जो कुछ करना चाहते हैं। सोच लो मुझे क्या करना है, तो बाबा को जानते चलेंगे, उसके समीप होते चलेंगे, उसकी बात सुनेंगे। याद होगा आपको, बाबा ने कभी कहते हैं मुरली में, साकार मुरली में बाबा का ऐसा था कि बाबा सामने बैठते थे और ये बाबा की मुरलियां भाषण नहीं था भगवान का, ये अपने बच्चों से बातचीत थी। सामने बैठी हुई आत्माओं को बाबा कुछ याद दिलाया करते थे, तुम ये थे। आप मुरली को इस ध्यान से सुनो, रोज याद दिलाता है, तुम निर्विकारी देवता थे बच्चे, मैंने तुम्हें इतना धनवान बनाया था, तुम विश्व पर राज करते थे। कहते हैं या नहीं? इस दृष्टि से मुरलियों को सुना करो। तो बाबा रो रियान कर रहे थे बच्चों से, तुम बच्चे मेरी कम सुनते हो, माया की ज्यादा सुनते हो। बड़ा मजा आया सुन के ही, बात तो ठीक है, मेरी कम सुनते हो माया की कम सुनते हो। कहा तो तुमने ये था, जब तुम आओगे हम आपकी ही सुनेंगे, अब सुनो मेरी। तो सुनो उसकी, मुरलियों में सब सुनाता है वो। मुरली पढ़ने वालों को भी ध्यान देना चाहिए, इसी तरह पढ़ें जैसे भगवान अपने बच्चों को याद दिला रहा है। मुरलियों में कितनी बार आता है पहली लाइन में ही, बच्चे अपरंपार खुशी होनी चाहिए, भगवान के सम्मुख बैठे हो, आता है ना, तुरंत इस गुड फीलिंग में आ जाओ। मुरली पढ़ने वालों को भी चाहिए इसको अंडरलाइन करें, 1 मिनट आधा मिनट ले जाएं उस फीलिंग में, भगवान के सम्मुख बैठे हो। तो हमें उससे सब कुछ लेना है, चिंतन कर लेना भाग्य कैसे बनता है अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के लिए। क्लासेस तो आपको यहां मिलती रहेंगी, हर क्लास से 2-4 अच्छी पॉइंट नोट कर लेना, उनके आधार से अपनी प्लानिंग बना लेना। लेकिन पुरुषार्थ में मैं 4-5 चीजें आपको कह रहा हूं, उन पर आप ध्यान देना पूरा जीवन। पहला, अशरीरी बनने की प्रैक्टिस, जितनी करेंगे प्योरिटी नेचुरल होती जाए। खेल प्योरिटी का बहुत है ब्राह्मणों के लिए, जो ज्ञान छोड़ के जाते हैं ना, कह तो ये देते हैं मुझे संशय आ गया था, ये बात हो गई थी, हम बिजनेस में बहुत बिजी हो गए थे। मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं, तुम गलत बोल रहे हो, इम्प्योरिटी आ गई थी इसलिए भगवान को छोड़ के चले गए। का बात तो ठीक है, इम्प्योरिटी कभी ना आए। अशरीरीपन, स्वमान के अभ्यास, 5 स्वरूपों के अभ्यास, अच्छा योग, सकास देना, 5 चीजें लगातार इनको अपना जीवन बना लेंगे तो पुरुषार्थ दिनों दिन आगे बढ़ेगा और बाबा से दूर होने की नौबत नहीं आएगी। क्योंकि जो दूर हो गए हैं बड़ा कष्ट पा रहे हैं, कईयों का तो ऐसा हो गया भगवान भी छूटा, संसार भी छूटा, अकेले रह गए। शादी की थी कई कुमारों ने, कुमारियों ने, डिवोर्स हुए, झंझट हुए, भगवान भी छूटा, परिवार भी छूटा, अकेले रह गए, अब उदास है, डिप्रेशन में है। मैं बहुत समझाता हूँ कुमार कुमारियों को, माताएं भी छोड़ती हैं बहुत, भाई लोग भी छोड़ते हैं बाबा को बहुत। छोड़ने का एक ही कारण होता है, विकार बढ़ जाते हैं अंदर में, वो न बढ़े इसके लिए योग साधना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ध्यान से सुन ले सभी, कोई भी ब्राह्मण अगर 4 घंटे तक योग नहीं करते रोज, उनके अंदर इम्प्योरिटी बढ़ेगी ही, वो परेशान होंगे, दुखी होंगे, डिस्टर्ब होंगे, फिर कहीं टकराव में आएंगे, कहीं इरिटेट होंगे। 4 घंटे बैठ के योग नहीं करना है, ये ध्यान दें। 1-1.5 घंटा बैठो, बाकी कर्म में योग का प्लान बना लो। बहुत सब कुछ आप जानते हैं, सुनते हैं, उसके लिए अपनी प्लानिंग सुंदर करेंगे तो 4 घंटे योग जिसका रोज रहेगा, स्मृति स्वरूप, अब स्मृति में है, ड्रामा का खेल पूरा हो रहा है, अब घर जाना है, ये योग हो गया। 20 सेकंड का ये संकल्प है केवल, ये आपको योग युक्त बनाने वाला है, योग में काउंट हो गया। आप संकल्प कर रहे हैं, मैं इस सृष्टि की मान आत्मा हूं, भगवान ने मुझे चुना है, योग हो गया आपका। कर्म में ऐसी प्लानिंग बनानी है तो सभी बहुत अच्छा पुरुषार्थ का प्लान लेकर जाना, उड़ते रहना और जीवन में ढिलाई कभी ना आए। भगवान से सब कुछ ले लेना है, जिसे मांगते थे वो भंडारे भरपूर करने आया है, ऐसा भरपूर कर लें कलयुग में भी, अगले कलयुग में भी कुछ मांगना ना पड़े। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।